आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति का सप्तम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज 58वें श्लोक में भगवान मनु राजा के विषयों के बारे में बताते हुए कहते हैं, सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपंश्चिता मंत्रयेत् परमं मंत्रं राजा खाद्य गुण संयुतम्। राजा सर्वेषां तु विशिष्टेन विपंश्चिता ब्राह्मणेन, सबसे प्रधान विद्वान ब्राह्मण के साथ षाड गुण संयुक्तम अर्थात संधि विग्रह यान आसन द्वैति भाव आश्रय इन छह विषयों सहित परमम मंत्रम मंत्रयेत, अत्यंत गूढ़ मंत्रणाओं पर विचार करे। 59वें श्लोक में कहते हैं, नित्यम तस्मिन् समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत तीन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्मं समारभेत। और तस्मिन् नित्यम समाश्वतः, उस पर सदा विश्वास रखते हुए सर्व कार्याणि निक्षिपेत, राज्य के सब कामों के भारों को सौंप दे। और तेन सार्धं विनिश्चित्य, उनके साथ ही पहले कोई निर्णय लेकर ततः कर्म समारभेत, फिर सब कर्मों का आरंभ करे। 60वें श्लोक में आवश्यकता अनुसार कितने अमात्यों की नियुक्ति करना चाहिए इसका विचार करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, अन्यानपि प्रकिरुवीत शुचीन प्रज्ञान अवस्थितान सम्यग्यर्थ समाहृत्य नमात्यान सुपरीक्षितान। आवश्यकता पड़ने पर अमात्यानपि अन्य भी अन्यानपि सुचीन प्रज्ञान अवस्थितान पवित्रात्मा बुद्धिमान निश्चित बुद्धि सम्यक अर्थ समाहृतीन पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरीक्षितान सुपरीक्षित अमात्यान प्रकुर्वीत, मंत्री करना चाहिए। 61वें श्लोक में कहते हैं, निवर्तेताश्य यावद्धि ऋतिकर्तव्यान्नभि तावतो तन्द्रिया तन्द्रितान दक्षान प्रकर्वीत विचक्षणान। निवर्तेताश्य यावद्भि नभि इति कर्तव्यता निवर्तित, जितने मनुष्यों के कर्तव्य सिद्ध हो चुके हैं, तावतः अतीन्द्रियान उतने आलस्य रहित दक्षान बलवान विचक्षण बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को प्रकुरवीत अधिकारी अर्थात मंत्री बनाए। 62वें श्लोक में कि अमात्यों के सहयोग से अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए इस बारे में महर्षि कहते हैं, तेषामरथे नियुञ्जेत सूरान दक्षान कुलोद्गतान सुचीना करकर्मान्ते भीरुनंतर निवेशयन। तेषामरथे इनके अधीन सूरान शूरवीर दक्षान अर्थात बलवान कुलोद्गतान कुल संपन्न सुचीन पवित्र भृत्यों को आकर कर्मांते बड़े बड़े कर्मों और भीरून अंतर्निवेक्षणे भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुंजित नियुक्त करे। अर्थात इनके अधीन सूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भक्तों को बड़े बड़े कर्मों में और डरने वालों को भीतर के कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। प्रधान दूत की नियुक्ति के बारे में महर्षि 63वें श्लोक में कहते हैं, दूतं चैव प्रकुरवीत सर्वशास्त्र विशारदं इंगिताकार चेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतं। कुलोद्गतं जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न हुआ हो, दक्षम और चतुर हो, सुचिम और पवित्र हो, इंगित आकार चेष्टज्ञम हाव भाव और चेष्टा में भीतर और भविष्यत होने वाली बात को जानने वाला हो, सर्व शास्त्र विशारदम सब शास्त्रों में चतुर हो, दूतम ये प्रकुरुवीत उस दूत को रखना चाहिए। श्रेष्ठ दूत के लक्षण 64वें श्लोक में कहते हैं, अनुरक्तः शुचिर दक्ष स्मृतिर्मान देश काल वित वपुष्मान वीति भीर वाग्मी दूतो प्राराग्यः प्रशस्यते। वह ऐसा हो अनुरक्तः, राजकाम में अत्यंत उत्साह और प्रीत से युक्त हो, शुचि अर्थात पवित्र हो, दक्षः अर्थात चतुर हो, स्मृतिमान बहुत समय तक स्मृति किसी बात को न भूलने वाला हो, देश काल वित देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता हो, वपुष्मान अर्थात सुंदर रूप से युक्त हो, वीति भी और निर्भय हो, वाग्मी बड़ा वक्ता हो, राज्ञः दूतः प्रशस्यते वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। अमाते दंड आयातौ दंडे वैनयकी क्रिया नृपतौ कौशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययो। अमाते दंडः, अमात्य को दंडाधिकार, दंडे वैनयी की क्रिया, दंड में अनुशासित क्रिया अर्थात जिसने अन्याय रूप दंड न होने पावे, नृपतौ कोशराष्ट्रे राजा के अधीन कोश और राष्ट्र तथा सभा के अधीन सब कार्य, दूते संधि विपर्ययो और दूत के अधीन किसी संधि या विरोध आयतः अधिकार देना चाहिए। 66वें श्लोक में दूत के कार्य बताते हुए कहते हैं, दूत एव हि संधत्ते भिनत्ते वचन संहतान दूतस्तकुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवा। ही क्योंकि दूतः एव, दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो संधत्ते शत्रु और राजा का मेल करा देता है, च संहतान भिनत्येव और मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है। दूतः तत्कर्म कुरुते दूत वह काम कर देता है, येन मानवाः भिन्द्यते जिससे शत्रु के लोगों में भी फूट पड़ जाती है। यहाँ पर विचार करते हुए आचार्य कौटिल्य ने जो दूत के कार्य बताए हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रेषणम संधिपालत्वम प्रतापो मित्र संग्रह उपजापः सुहृद्भेदो दंडगूढ़ातिसारणम बंधुरत्नापहरणम चारज्ञान पराक्रमः क्षमाधिमोक्षः दूतस्य कर्मस्योगस्य चाश्रयः। अर्थात राजा अपने संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और दूसरे का संदेश लाना, संधिभाव को बनाए रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष में पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, कार्यरत अपने गुप्तचरों अथवा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के बांधवों आदि को के रत्न का अपहरण आदि करना, शत्रु देश में कार्यरत अपने गुप्तजनों के कार्य का निरीक्षण करना, समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना और बंधक रखे शत्रु बांधवों को शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राजाओं की भेंट आदि कराना दूत के कार्य हैं। 67वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं, सविद्यादस्य कृत्येषु निगूढ़ेंगित चेष्टिता आकारः मंगितः चेष्टा भ्रत्येषु च चिकीर्तिसः। सह दूत वह दूत अस्य शत्रु राजा के कृत्येषु असुर असंतुष्ट या विरोधी लोगों में च भृत्येषु और राज्य कर्मचारियों में निगूढ़ इंगित चेष्टितई गुप्त संकेतों और चेष्टाओं से अकारम इंगितम चेष्टाम शत्रु राजा के आकार भाव इंगितम संकेत चेष्टाम चेष्टा प्रयत्न तथा चिकित्सितम उसके अभिलाषित कार्य उसकी इच्छाओं का को विद्या जाने अर्थात वह दूत शत्रु राजा के असंतुष्ट या विरोधी लोगों में और राज कर्मचारियों में गुप्त संकेतों और राजा के आकार संकेत चेष्टा इत्यादि को देखकर उसकी इच्छाओं को जाने। 68वें श्लोक में बद्ध्वा सर्वं तत्वेन परराज चिकीर्षितं तथा प्रयत्नमातिष्ठे यथात्मानं न पीडयेत। वह सभापति और सभासद वा दूत तत्वेन यथार्थ से परराज चिकीर्षितं दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय बुद्ध्वा जानकर तथा प्रयत्नस्ति आतिचेष्टेत वैसा यत्न करे यथा कि जिससे आत्मानम न पीड़यित अपने को पीड़ा न हो। राजा के निवास योग्य देश जांगलम सस्य सम्पन्नम सम्पन्नम आर्यप्रायमनाविलम रम्यमानतल सामंतम स्वाजीव्यम देशमावसेत। राजा जांगलम जांगल प्रदेश जहाँ उपयुक्त पानी बरसता हो बाढ़ न आती हो खुली हवा हो सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो धान्य इत्यादि उत्पन्न होता हो शस्य संपन्नम हरा भरा आर्य प्रायम श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य अनाविलम रोक रहित रम्यम रमणीय आनत सामंतम अर्थात विनम्रता आदि का व्यवहार करने वाले निवासी स्व आजीवम आजीविकाओं को संपन्न जो हो देशम मावसेत ऐसे देश में निवास करे। अर्थात राजा जहाँ उपयुक्त पानी बरसता हो बाढ़ न आती हो खुली हवा सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो हरा भरा श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य जहाँ पर हो और रोग रहित हो रमणीय स्थल हो विनम्रता का व्यवहार करने वाले निवासी हों आजीविकाओं से संपन्न जो हों ऐसे देश में निवास करना चाहिए। 6 प्रकार के दुर्गों के बारे में महर्षि मनु 17वें श्लोक में बताते हैं धन्व दुर्गम मही दुर्गम अबदुर्गम वार्षमेव च वा न दुर्गम गिर दुर्गम वा क्षमाश्रित्य वसेत्पुरम। धन्व दुर्गम मरुस्थल में बना किला वहाँ मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो। मही दुर्गम पृथ्वी के अंदर तहखाने या गुफा के रूप में बना हुआ किला मिट्टी की बड़ी बड़े मेढ़ों से घिरा हुआ हो। अप दुर्गम जल दुर्ग जहाँ पर चारों ओर पानी हो अथवा वार्छम वृक्ष दुर्ग जो घने वृक्षों के वन से घिरा हो। नृ दुर्गम जो सेना के द्वारा घिरा रहे और चारों ओर सेना का निवास हो अथवा गिर दुर्गम पहाड़ के ऊपर बनाया गया किला क्षमाश्रित बनाकर उसका आश्रय करके पुरम वसेत उसमें निवास करे। इकहत्तरवें श्लोक में कहते हैं सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत येषां हि बहुगुणेन गिरिवर्गम विशिष्यते। सर्वेण तु प्रयत्नेन सब प्रकार के प्रयत्न करके गिरिदुर्गम समाश्रयेत पर्वत दुर्ग का ही आश्रय बनाकर रहे क्योंकि बाहुगुणेन सब दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण गिर दुर्गम विशेष्यते पर्वत दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः यह याद रखना चाहिए कि पर्वत दुर्ग ही बनाए। त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगरताश्रयाप्सरा त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लंगवम् अनमरात्मराः। ईशाम इन पूर्वोक्त 6 दुर्गों में आद्यानि त्रीणि आदि के पहले तीन दुर्गों में, मृग गतश्रियाह अप्सराह मृग बिलों में रहने वाले चूहे आदि जलचर प्राणी मगरमच्छ आदि आश्रिता रहते हैं। उत्तराणि त्रीणि अगले तीन में क्रमशः वृक्ष नर और गिरि में प्लवंगम नर अमरा वानर मनुष्य और देवता निवास करते हैं।
यथा दुर्गाश्रितान नेतान नोपहिंसति शत्रवः तथा रयो न हिंसन्ति नृपं दुर्ग समाश्रितम्।
जैसे दुर्ग आश्रिता नेतान अपने अपने दुर्ग में रहते हुए शत्रवः न उपहिंसति शत्रु प्राणी इन्हें नहीं मार पाते हैं, वैसे ही दुर्गम समाश्रित्य नरम दुर्ग के आश्रय में जो स्थित राजा है उसको अरयः न हिंसन्ति हिंसन्ति शत्रु लोग नहीं मार सकते।
एकम शतम योधयति प्राकारस्थरोथो धनुर्धरः शतम दश सहस्राणि तस्माद् दुर्गम विधीयते।
प्रकारास्थः नगर के चारों ओर जो प्रकार प्रकाट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक धनुर्धरः एक धनुर्धर वीर शस्त्रयुक्त पुरुष शतम सौ के साथ और शतम दस सहस्राणि सौ दस हजार के साथ योधयत युद्ध कर सकते हैं। तस्मात दुर्गम विधीयते, इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है।
तस्मात् स्यादायुधम संपन्नम धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पभिर्यन्त्रैः यवसेनोदकेन च।
तत् वह दुर्ग आयुधा शस्त्र शास्त्रार्थ से धनधान्येन वाहनैः धन धान्य वाहन ब्राह्मणैः ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने वाले हों, शिल्प भी कारीगर से, मंत्रैः नाना प्रकार के यंत्रैः यंत्रों से, यवसेन घारा चारा घास इत्यादि से, उदकेन जल आदि से संपन्नम स्यात् संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो। राजा का निवास ग्रह बताते हुए 76वें श्लोक में कहते हैं,
तस्य मध्ये सुपर्याप्तम कारयेत् गृहमात्मनः गुप्तम सर्वतुकम शुभ्रम जलवृक्ष समन्वितम।
तस्य मध्ये उसके मध्य में जलवृक्ष समन्वितम जलवृक्ष पुष्पादिक युक्त गुप्तम सब प्रकार से रक्षित सर्व ऋतुकम सब ऋतुओं में सुखकारक शुभ्रम श्वेत वर्ण आत्मनः ग्रहम अपने लिए घर सुपर्याप्तम जिसमें सब प्रकार का राजकार निर्वाह हो सके कारयेत् बनवावे। राजा के विवाह योग भार्या 77वें श्लोक में बताई गई है।
तदध्यायाशोद्भे भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम कुले महतीम संभूताम हृद्याम रूप गुणान्विताम।
इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजा के काम करके करने के पश्चात रूप गुण आन्विताम सौंदर्य रूप गुणयुक्त हृद्याम हृदय को अति प्रिय लगने वाली महति कुले संभूषिताम बड़े कुल में उत्पन्न लक्षण आन्विताम सुंदर लक्षणों से युक्त सभार्याम सवर्णाम भार्याम उद्वहित अपने ही वर्ण की अर्थात क्षत्रिय कुल की कन्या से जो सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे। 78वें श्लोक में पुरोहित का वर्ण करने के बारे में बताया गया है।
पुरोहितं च करवीत व्रणुयादेव चर्वित्विजः तेस्य गृहिणा गृहयाणि कर्माणि कुर्युत वैतानि कानि च।
पुरोहितं च ऋत्विजं वणुयाच्च प्रकुर्वीत। पुरोहित और ऋत्युक का स्वीकार इसलिए करे कि ते वे ग्रह्याणि च वैतानिकानि अस्थकर्माणि कुर्युः। अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहें। यजेत राजा क्रतुभिर् विविधैराप्त दक्षिणै धर्मार्थ चैव विप्रेभ्यो दद्याद् भोगान्धनानि च। राजा आप्त दक्षिणै विविधैः क्रतुभिः बहु दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को यजेत किया करे तथा धर्मार्थम धर्म के लिए विप्रेभ्यः विद्वान ब्राह्मणों को भोगान च धनानि दद्यात् भोग्य वस्तुओं एवं धनों का दान करे। सांवत्सरित सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेत् बिलं बलिं साक्षान्नाय परो लोको वरतेत पितृन् वनरसो। सावत्सरिकं बिलं बलिं वार्षिक कर आप्तैः आहारयेत् आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे। जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब आमनाय परह सभा वेदानुकूल होकर नृसु पितृवत वर्तेत प्रजा के साथ पिता के समान वर्ताव करें। विधि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में 21वें श्लोक में बताया गया है। अध्यक्षान विविधान कुर्यान् तत्र तत्र विपश्चितः तेस्य सर्वाण्यवेक्षन् रन् ऋणां कार्याणि कुर्वताम्। राजा को चाहिए विविधान विपश्चितः अध्यक्षान् अनेक मेधावी प्रतिभा संपन्न योग्य विद्वान अध्यक्षों को तत्र तत्र आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों में कुर्यात् नियुक्त करे। ते अस्य सर्वाणि कार्याणि कुर्वताम् वे विभागाध्यक्ष इस राजा के द्वारा नियुक्त अन्य सब अपने आधीन कार्यों को करने वाले निणाम अवेक्षेरण कर्मचारियों लोगों को निरीक्षण करें। अवेक्षेरण माने निरीक्षण किया करें। कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्षों के बारे में कहा गया है कि एक सेनाध्यक्ष होना चाहिए जो संपूर्ण सेनाओं का निरोधक हो, एक कोषाध्यक्ष हो जो खजाने का मालिक हो, एक आकराध्यक्ष हो जो खानों का अध्यक्ष हो, एक अक्षपटलाध्यक्ष हो जो आय व्यय का महानिरीक्षक हो, एक कोष्ठगाराध्यक्ष हो एक जो कोठारी का निरीक्षण करे, आयुधगाराध्यक्ष हो युद्ध सामग्री का निरीक्षण करे, पर्ण्याध्यक्ष हो बाजार का नियंत्रक अधिकारी हो, कुप्याध्यक्ष हो वन की वस्तुओं का अध्यक्ष हो, शीताध्यक्ष अर्थात कृषि विभाग कर के रूप में एकत्रित धान्य का नियंत्रक अधिकारी हो, शुल्काध्यक्ष चुंगी का अधिकारी हो, पौतवाध्यक्ष तोल माप का अधिकारी हो, मानाध्यक्ष देशकाल के मानों का नियंत्रक हो, पंद्रहवां सूत्राध्यक्ष सूत इत्यादि का अध्यक्ष हो। इसी प्रकार से 27 अध्यक्ष धर्माध्यक्ष इत्यादि 27 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन महर्षि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। 82वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं कि राजा को स्नातक विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। आवृत्तानां गुरुकुलाद् विप्राणां पूजको भवेत् नृपाणां मक्षको मक्षयो हेश निधिर्ब्राह्मो विधीयते। नृपाणां ब्रह्मा एष अक्षयः निधि विधीयते। सदा जो राजाओं को वेद प्रचार रूप अक्षय कोष है गुरुकुलात् आवृत्तानां पूजकः भवेत्। इसके प्रचार के लिए कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसको सत्कार राजा और सभा यथावत करें। पिप्राणाम तथा उस उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान हों में इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। नते स्तेना नचामित्रा हरन्ति नच नश्यति तस्माद्रज्ञाम निधातव्यो ब्रह्मणे स्वक्षयो निधि। तम उस अक्षय निधि को न स्तेनाह न च अमित्राह हरन्ति, न चोर और न शत्रु हर सकते हैं, न च नश्यन्ति तस्मात् और न कभी नष्ट होती है, इसलिए राजा ब्रह्मणेषु अक्षय निधि नितव्या, राजा को ब्राह्मणों में अक्षय निधि अवस्थापित करनी चाहिए अर्थात धन धान्य आदि का दान देना चाहिए। न स्कंदते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित वरिष्ठम अग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम। ब्राह्मण के मुख में होमा गया पदार्थ अर्थात ब्राह्मणों को दिया गया दान अग्निहोत्रेभ्यः वरिष्ठम अग्निहोत्र करने से भी श्रेष्ठ फलदायक है, क्योंकि न स्कंदते न तो वह व्यर्थ गिरता है, न व्यथन्ते और न सूखता है और न विनश्यति न कभी नष्ट होता है। समम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे प्रादीते शतसाहस्रम अनंतम वेद पारगे। आ ब्रह्मणे दानम समम ब्राह्मण वर्ग में भिन्न व्यक्ति को दान देने में समान फल मिलता है अर्थात उस दान का ना अच्छा ना बुरा फल मिलकर बराबर रहता है। ब्राह्मण ब्रुवे ब्राह्मण कहने वाले मात्र व्यक्ति को दान देने से द्विगुणम दुगुना फल, प्रधीते पढ़ने वाले को देने से शस्त्र सहस्त्रम लाख गुना, वेद पारगे वेदों में पारंगत विद्वान को देने से अनंतम अनंत फल मिलता है। छियासीवें श्लोक में कहते हैं पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धधानतयैव च अल्पं वा बहुवा प्रीत्य दानस्य फलमश्नुते। पात्रस्य हि विशेषेण पात्र की विशेषता से अर्थात दान लेने वाले जैसा सुपात्र है उसके मतानुसार श्रद्ध धानर तया श्रद्धा से दान देने पर दानस्य अल्पम वा बहुमा दान देने का थोड़ा बहुत तो अवश्य ही प्रेत परलोक में फलम अश्नुते फल प्राप्त होता है। 27वें श्लोक में कहते हैं समोत्तमा धमई राजा त्वाहूता पालयन प्रजा न निवरतीत संग्रामात छात्रम धर्मम मानुस्मरण। प्रजा पालयन राजा, जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को सम उत्तम अधमई आहूत तू अपने से तुल्य उत्तम और छोटा संग्राम करने में आवाहन करे, छात्रम धर्मम अनुस्मरण क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्रामात न निवर्तित संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपनी ही विजय हो। संग्रामे स्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम शुश्रूषां ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम। संग्रामेषु अनिवर्तित्वं संग्राम से न टलना और प्रजानां पालनम और प्रजाओं का पालन करना, ब्राह्मणानां शुश्रूषा ब्राह्मणों की सेवा करना, राज्ञाम परम श्रेयस्करम, ये बातें राजा के लिए परम कल्याणकारी होती हैं। 89वें श्लोक में कहते हैं, आहवेशु मिथोन्योन्याम जिघां संतो महीक्षितः युध्यमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्यपराङ्मुखा। आहवेशु, जो संग्रामों में अन्यः अन्यम जिघांसतः, एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए, महीक्षितः राजा लोक, परम शक्त्या अपराङ्मुखा, जितना सामर्थ्य हो बिना डरे पीठ न दिखाकर युद्धमाना युद्ध करते हैं, वे स्वर्गम यान्ति, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 90वें श्लोक में कहते हैं कि नकटो नकूटैरायुधैर्हन्यान युध्यमानो रणेरिपून न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नग्निज्वलित तेजिनैः रणे रिपून युध्यमाना। युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए राजा कूटैः आयुधैः, धोखायुक्त शस्त्र शास्त्रों से, जैसे बाहर लकड़ी देखती हो और अंदर विषैला लोहा आदि का शस्त्र छिपा हो, करणी भी करणी के आकार के बाणों से, जो आगे से नुकेले और मध्य में चौड़े होने के कारण शरीर में लगने के बाद निकलते नहीं, दिग्धैः विषभुजे बाणों से, अग्निज्वलित तेजनैः अपि, और उनका फलक अग्नि से में तप रहा हो, अर्थात तपते बाणों को भी नहीं मारना चाहिए। युद्ध में किनको न मारे, इसका विचार 91 से 93 श्लोकों तक किया गया है। न च हन्त्यान स्थलारूढ़ न क्लीबम न कृतांजलिम न मुक्तकेशम नासीनम न तवाश्मीतिवादिनम न सुप्तम न विषान्नाहम न च नगनम निरायुधम न आयुध्यमानम पश्यन्तम न परेण समागतम नायुध व्यसनम प्राप्तम नारतम नातिपरीक्षितम न भीतम नापरावृत्तम सताम धर्मम मनुस्मरन। न स्थल आरूढ़, युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न क्लीबम न नपुंसक, न कृतांजलिम न हाथ जोड़े हुए, न मुक्त केशम न जिनके सिर के बाल खुल गए हों, न आसीनम न बैठे हुए, न तवास्मि इति वादिनम मैं तेरे शरण में हूँ ऐसा कहकर, न सुप्तम और सोते हुए, न विषान्नम और मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्नम नग्न हुए, न निरायुधम न आयुध से रहित, न आयुध्यमानम न युद्ध करते हुए देखने वाले को, न परेण समागतम न शत्रु के साथी, न आयुध व्यसन प्राप्तम न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न आर्तम न दुखी, न अति परीक्षितम न अत्यंत घायल, न भीतम न डरे हुए, और न परावृत्तम न पलायन करते हुए पुरुष को, सताम धर्मम अनुस्मरण सत्पुरुष ने धर्म का स्मरण करते हुए हन्यात योद्धा को कभी नहीं मारना चाहिए। चौरानवे श्लोक में कहते हैं कि युद्ध से भागने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः भरतो यद्य दुष्कृतम् किंचित तत् सर्वं प्रतिपद्यते। यह तु, और जो संग्रामी युद्ध क्षेत्र में परावृत्तः पीठ दिखाकर भाग जाए, भीतः परैः हन्यते डरकर भागता हुआ शत्रुओं के द्वारा मारा जाए, उसे भरतो राजा की ओर से प्राप्त होने वाला यत किंचित दुष्कृतम जो भी कुछ दंड अपराधी भाव व बुराई है, तत्सर्वम प्रतिपद्यते उस सबका पात्र बनकर वह दंडनीय होता है, अर्थात राजा के मन में उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राजा उसकी सुख सुविधा को छीन कर दंड देता है। 95 श्लोक में कहते हैं, यक्षास सुकृतम किंचित अमूत्रार्थ मुपार्जितम भरता तत्सर्वम आदत्ते परावृत्त हतस्य तु। यत किंचिम अस्य सुकृतम, और जो उसकी प्रतिष्ठा है, अमूत्रार्थम उपार्जितम, और जिससे इस लोक और परलोक में सुख होना होने वाला था, तत्सर्वम भरता आदत्ते, उसको उसका स्वामी ले लेता है। परावृत्तस्य हतस्य तु, जो भागा हुआ मारा जाए उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा को वह प्राप्त नहीं होता जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया है। छियानवे श्लोक में कहते हैं कि रथाश्वम हस्तिनम छत्रम धनम धान्यम पशुं स्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यम च यो यज्जयति तस्य च तत। इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि यत यह लड़ाई में जिस जिस अमात्य व अध्यक्ष ने रथ अश्वम हस्तिनम धनम धान्यम पशुं स्त्रियः तथा सर्वद्रव्याणि अन्य प्रकार के सब द्रव्य कुप्यम और घी तेल इत्यादि जयत जीते हूँ तत्तस्य वही उसका ग्रहण करें। जीते हुए धन से राजा को उद्धार देना, राज्ञस्य राज्ञस्य दध्युरा उद्धारम इत्येषां वैदिकी श्रुति राज्ञा च सर्वद्योद्धेयभ्यो दातव्यम पृथगर्जितम। परंतु सेनास्थ जन भी उस जीते हुए पदार्थ में से उद्धारम राज्ञः दद्युः 16वां भाग राजा को देवी और सर्वयोद्धेभ्यः राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को अपतक जितम उस धन में से जो सब ने मिलाकर जीता हो दातव्यम 16वां भाग देवी। एषा नुपस्कृतः प्रोक्तो ये योधधर्मः सनातनः अस्माद्धर्मान्न च वेत क्षत्रियोद्धनरणेरिपून्। एषः यः अनुपस्कृतः अनिन्दित सनातनः सर्वदा मान्य योधधर्मः प्रोक्तः, योद्धाओं का धर्म कहा है, क्षत्रियः क्षत्रिय व्यक्ति, रणे रिपून ध्वन युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए, अर्थात धर्मान न चवेत, इस धर्म से विचलित न हुए। राजा द्वारा चिंतनीय बातें 99 श्लोक में बताई गई हैं। अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धेत चैव वृद्धम पात्रे निक्षिपेत। राजा और राजसभा अलब्धम च एव लिप्सेत, अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, लब्धम प्रयत्नतः रक्षित, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षितम वर्धयेत, रक्षित को बढ़ावे, और वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत, बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ असहायों के पालन में लगावे। एतक चतुर्विधम विद्यात् पुरुषार्थ प्रयोजनम अस्य निष्ठम अनुष्ठानम सम्यक् कुर्यादतीन्द्रियतः। एतत् वतुर्विधम चतुर्विधम, यह चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजनम, राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य विद्या समझना चाहिए। राजा अनिन्द्रितः आलस्य रहित होकर अस्य नित्यम सम्यक अनुष्ठानम कुर्यात्, इस उद्देश्य का सदैव पालन करता रहे। अलब्धम इच्छेत दंड दंडेन लब्धम रक्षेत दवीक्षया रक्षितम वर्धयेत वृद्ध्या वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। दंडेन अलब्धम इच्छेत, दंड से अप्राप्ति की प्राप्त की इच्छा अवेक्षया नित्य देखने से लब्धम रक्षित प्राप्त की रक्षा रक्षितम वृद्ध्या वर्धयेत, रक्षित की वृद्धि अर्थात ब्याज से बढ़ावे, वृद्धम और बढ़े हुए धन को मार्ग में पूर्वोक्त मार्ग में धन धर्म इत्यादि में वे करे।
नित्यम मुद्यत दंडः स्यान् नित्यं विव्रत पौरुषः नित्यं संवृत्त संवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्यरि।
राजा नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, सदैव न्यायानुसार दंड का प्रयोग करने में तत्पर रहे। नित्यं विव्रत पौरुषः, सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे। नित्यं संवृत्त संवायैः, सदैव राज्य की गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे। नित्यम अरेह छिद्रानुसारी, सदैव शत्रु के छिद्रों कमियों की खोजता रहे, त्रुटियां पाकर अवसर मिलते ही अपने हित की चतुराई से पूर्ण कर ले।
नित्यमुद्यत दंडस्य कृष्णमुद्य द्विजिते जगत तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडेनैव प्रसादयेत्।
नित्यम उद्यत दंडस्य, जिस राजा के राज्य में सर्वथा दंड के प्रयोग से का निश्चय करता है तो उससे कृष्णम जगत उद्विजिते सारा जगत भयभीत रहता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सब प्रकार के प्राणियों को दंडेनैव प्रसादयेत्, दंड से साधे अर्थात दंड के भय से अनुशासन में रखे।
अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धैतारि प्रयुक्तां च मायां नित्यं ससंवृतः।
कथंचन कदापि, मायया न वर्तेत, किसी के साथ छल से न वर्ते। अमायया एव, किंतु निष्कपट होकर सबसे वर्ताव करे। और नित्यं ससंवृतः, नित्य प्रति अपनी रक्षा करे। अरि प्रयुक्तां मायां प्रबुद्धेत, शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करे।
नास्य छिद्रम परो विद्यात् विद्या छिद्रम परस्य तु गृही कुरुमीमांगानि रक्षेत् विवरमात्मनः।
परः अस्य छिद्रम न विद्यात्, कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके, और परस्य छिद्रम विद्यात्, स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। कूर्मैव अंगानि, जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, आत्मनः विवरम गृहेत रक्षेत, सत्व के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। 106वें श्लोक में
बकवक चिंतये दर्थां सिंहवक्ष पराक्रमेत व्रकवच्चावलुम्पेत शशवक्ष विनिष्पतेत।
बकवत अर्थान चिंतयेत, जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली को ताकता रहता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रुओं को जीतने के लिए सिंहवत पराक्रमेत, सिंह के समान पराक्रम करे। ब्रकवत अवलंबित, चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े, और समीप में आए बलवान शत्रुओं से शशवत विनिष्पतित, खरगोश के समान दूर भाग जाए, और पश्चात उनको छल से पकड़े।
एवं विजयमानस्य येस्य स्युः परिपंथिनः तानानैद्वशं सर्वान् समाधिभिरुपक्रमैः।
एवं विजयमानस्य, इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में ये परिपंथिनः स्युः, जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, तान उनको साम आदि भी, साम अर्थात मिला देना, दाम कुछ देकर, भेद तोड़ फोड़ करके, वशम आनेत, वन में वश में ले आए।
एक सौ आठवें श्लोक में कहते हैं, यदि तेनु नतिष्ठेयु उपायैः प्रथमैस्त्रिभिः दण्डेनैव प्रसह्यैस्तांश्च छनकैर्वशमानयेत्।
यदि ते
वे अस्त्रु शत्रु डाकू चोर इत्यादि प्रथमी त्रिभि उपाये न तिष्ठेयुः। अगर साम दाम दंड भेद से न शांत हो एतान दंडेन एव प्रसैः सनकैः वशम् आनयेत्, तब इनको दंड के द्वारा बलपूर्वक सावधानी पूर्वक वश में लाए। 109 श्लोक में कहते हैं, सामादीनाम उपायानाम चतुर्णाम अपि पंडिता सामदंडो प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये। पंडिता पंडित लोग साम आदिनाम चतुर्णाम अपि उपायानाम साम आदि साम दाम दंड भेद चारों उपायों में नित्यम राष्ट्र अभिवृद्धि राष्ट्र की सतत वृद्धि के लिए साम दंडो प्रशंसन्ति साम और दंड की ही प्रशंसा करते हैं। यथो 110वें श्लोक में कहते हैं, यथो धरति निर्दाता कक्षम धान्यम च रक्षति यथा रक्षे नृपो राष्ट्रम हन्याक्ष परिपंथिनः। यथा जैसे निर्दाता धन का निकालने वाला कक्षम उद्धरति धान्यम रक्षति छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता है टूटने नहीं देता, तथा वैसे ही नृपः परिपंथिनः हन्यात् राजा डाकू चोरों को मारे च राष्ट्रम रक्षेत् और राष्ट्र की रक्षा करे। 111वें श्लोक में कहते हैं, मोहाद् राजा स्वराष्ट्रम यः कर्षन्त्यन्यवेक्षया सोचिराद् भ्रंसते राज्यात् जीविताच्च सबान्धवा। यह राजा जो राजा मोहात् अनवेक्षया मोह से अविचार से स्वकार्यम कर्षेत अपने राज्य को दुर्बल करता है, सह राज्यात् वह राज्य से और सबान्धवा जीवितात् बंधु सहित जीने से पूर्व ही अचिरात शीघ्र ही भ्रंशते नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। प्रजा के शोषण से हानि 112वें श्लोक में बताया गया है, शरीर कर्षणात् प्राणा क्षीयन्ति प्राणिनाम तथा तथा राज्ञामपि प्राणा क्षीयन्ति राष्ट्रकर्षणात्। जैसे प्राणिनाम प्राण प्राणियों के प्राण शरीर कर्षात् क्षीयन्ति शरीर को कृषित करने के लिए छीण हो जाते हैं, तथा वैसे ही राष्ट्र कर साथ प्रजाओं के दुर्बल करने से राज्ञाम अभिप्राणा राजा के भी प्राण बलादिबंध सहित छीयंते नष्ट हो जाते हैं।